साल जो कोविड वेव था वो काफी, जिसमें लॉकडाउन काफी कड़ा था और लोग काफी डरे हुए थे गांव में। हर जगह पे उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी, कोई गांव में एंटर नहीं कर सकता था या बाहर नहीं जा सकता था, और वो 2-3 महीना बहुत स्ट्रिक्टली हर जगह फॉलो हुआ। पर जो वायरस है उसका वायरुलेंस उतना स्ट्रांग नहीं था, इन्फेक्टिविटी स्ट्रांग नहीं थी, उस वजह से वो वायरस का स्प्रेड बहुत लोगों को नहीं हुआ। तो पिछले साल गांव में उतने केसेस नहीं दिखे और इवन हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत ही कम केसेस थे।
जी
मतलब जो भी स्टाफ थे तो उनको हमने हॉस्पिटल में रखा था, तो बहुत ही कम स्टाफ पॉजिटिव हुए थे, 5-10 स्टाफ हुए थे और उनको हम हॉस्पिटल में रख पाए थे। और बालोद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काफी अच्छे से वहां पे केसेस स्कैटर हो रहे थे और ठीक भी हो रहे थे, और मॉर्टेलिटी भी इतनी हाई नहीं थी उनमें, जिनको हुआ भी डेथ्स भी बहुत कम थे। तो पिछले साल जो जनजीवन की व्यवस्था खराब हुई वो थी लॉकडाउन की वजह से, जिसमें कि लोगों का, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, जो इस शहरों की बात कर रहा हूँ। और दूसरा था कि जो डेली वेजेस पे काम करने वाले मजदूर है उन लोगों के लिए मुश्किल हुआ। पढ़ाई के इसमें काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ क्योंकि सारे कॉलेजेस बंद है, अभी भी बंद है, बहुत सारे कॉलेज में एग्जाम्स नहीं हुई और ये सारा चीजें। और जो नॉन कोविड बीमारियां है उसको काफी सफर हुआ क्योंकि फिर सारा रिसोर्सेस कोविड पे लग गए। तो जो
जी
भी मलेरिया, टीबी या बाकी इस पे जो भी ग्रांट्स थे या जो भी काम थे या जो भी फ्रंटलाइन वर्कर उसको देख रहे थे, उन सब का ध्यान उसमें से हटके कोविड के इस पे चला गया। तो ये एक चीज हुई और इससे बहुत सारी दूरियां आ गई लोगों में। शायद एक लगता है कि कोई मरीज है तो उसको आउटकास्ट कर देना या फिर उसको छूना नहीं, या फिर लोगों में डर बैठ गया कि भाई अगर पॉजिटिव आ जाते तो कहीं पे क्वारंटाइन रख देंगे ये लोग और कहीं अलग रख देंगे। तो धीरे धीरे सरकार भी धीरे धीरे सीखी, पहले में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन में कहीं पे भी रख देते थे उनको, पुलिस आके लेके जाती थी घर से उठा के। फिर बाद में धीरे धीरे उनको समझा कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है सबको क्वारंटाइन करने की, तो फिर होम आइसोलेशन शुरू हुआ और ये सारा चीज धीरे धीरे वो सीखे। तो ये एक पिछले साल का मेडिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो, ताकि हॉस्पिटल प्रिपेयर्ड थे, जो भी थोड़ा सा प्रिपरेशन था, अप्रेंशन था, बाकी हॉस्पिटल्स तो बंद थे लॉकडाउन में, शहीद अस्पताल फिर भी शुरू था, और डिस्ट्रिक्ट और ये एक दो अस्पताल मिलके अच्छे से केसेस को मैनेज कर पा रहे थे। मतलब बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है या ऑक्सीजन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस दौर में फिर युमेता फाउंडेशन की तरफ से हमने जो मेन काम किया था वो 3 या 4 लेवल पे किया था, कि सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया में जो भी अच्छा काम करने वाले एनजीओ है, हॉस्पिटल्स है, उन लोगों की सूची बना के उनसे बात करना, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं था। पीपी कहाँ से मिलेगा, N95 कहाँ से मिलेगा, सैनिटाइजर्स कहाँ से मिलेंगे, बहुत कम थे। और बहुत लोगों को, क्योंकि इतना ज्यादा क्लिनिकल काम में उनका एनर्जी जा रहा था, तो वो मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने फिर एक कुछ दोस्तों की मदद से ये एक नेटवर्क बनाया, जहाँ जहाँ पे ये सब चीजें जरूरी थी, ऐसे हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उन तक वो सामान पहुंचाना, और जहाँ जहाँ पे फंड्स का प्रॉब्लम आया वहां पे फिर हम लोग ही फंड रेस करके डोनेशंस के रूप में उन तक वो चीजें भेज रहे थे। ये एक था। और दूसरा था फिर माइग्रेंट जो है छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे बहुत सारे पहुंच रहे थे महाराष्ट्र से, तो मैक्सिमम माइग्रेंट जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे लोग महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पे पहुंच रहे थे, और वहां से फिर आगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यूपी या नॉर्थ ईस्ट यहाँ जाना शुरू कर रहे थे। तो इसलिए डेली छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे काफी सारे लोग, लाइक 5 से 10 हजार लोग पहुंच रहे थे, और गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी कि इनके लिए व्यवस्था क्या बनाई जाए। तो हमने फिर अगेन फंड रेज का अपील किया और कुछ वेल विशर्स या हम लोग खुद इसने हमने फंड रेज करके कुछ प्राइवेट व्हीकल्स हायर किए, गवर्नमेंट से परमिशन ली कि वो टू एंड फ्रो ये माइग्रेंट्स को लेके जाएगी। तो फिर उस वो सिलसिला फिर शुरू हुआ मई में, और फिर वो मई, अप्रैल, मई में, और फिर वो सारा महीना हम लोग काफी सारे माइग्रेंट्स को झारखंड बॉर्डर या ओडिशा बॉर्डर या यूपी बॉर्डर, बिहार बॉर्डर तक पहुंचा पाए छत्तीसगढ़ बॉर्डर से। और उसके बाद एक और एक सिस्टम बनाया कि उस स्टेट के अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दे कि इतने इतने लोग यहाँ से चल चुके हैं, ये नंबर है बस का, और इतने इतने लोग इस जिले से है, तो आप इसके आगे अब उनको आगे लेके जाइए या वहाँ पे व्यवस्था कीजिए। तो वैसे कुछ 6-7 हज़ार माइग्रेंट्स को हम लोग इस बॉर्डर से आगे पहुंचा पाए। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई से जो भी ट्रेन चलते थे, तो लोगों को पता नहीं था कि ये सब आगे कोई स्टेशन पे खाना नहीं, तो उस वजह से क्या हो जाता था कि ये लोग बैठ जाते थे ट्रेन में, लेकिन फिर आप खाली पेट या भूखे पेट इनको सफर करना पड़ता था। तो फिर उसमें हम स्टेशन पे खाने के पैकेट्स, पानी, दूध, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे मदर है या फिर जो बच्चे हैं जो दूध पी रहे, उन लोगों के लिए दूध अवेलेबल नहीं होता था बहुत बार, तो वो सारे चीजें अलग अलग स्टेशन पे मुहैया करने का काम किया। और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों में एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, सेक्स वर्कर्स है, तो मुझे लगता है ये राशन का डिस्ट्रीब्यूशन का जो बहुत जरूरी था उस वक्त, वो एक काम हम लोग पिछले साल कर पाए। इस साल का जो कोविड वेव है वो टोटली अलग है, इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्प्रेड है। पिछले साल गांव में इतना ज्यादा इन्फेक्शन हमने नहीं देखा था, इस साल बहुत ज्यादा है, और हर गांव के नियर अबाउट हर एक घर में एक ना एक व्यक्ति को बुखार बुखार आया है। एक व्यक्ति को आया तो घर के सारे लोगों को आ गया, तो सारे के सारा गाँव अफेक्ट हो गया, ऐसा सिचुएशन दिखता है। और इसमें डेथ्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक जो गड़बड़ मेन हुई है कि पिछले साल बहुत ज्यादा डेथ नहीं हुई और जो लोग को हुआ था वो ठीक हो गए, तो इस साल लोग रिलैक्स रहे और टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आए। दो कारण थे, एक तो डर था, दूसरा कारण था टेस्टिंग सेंटर्स उतने नहीं थे, तीसरा था कि कोविड हुआ तो भी ठीक हो जाएगा अपने आप, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उस वजह से बहुत सारा डिले हुआ लोगों का पहुंचने में हॉस्पिटल में। एक ऑन एन एवरेज 6 डे को आते थे सिम्टम के बाद, टेस्टिंग हुई नहीं रहती थी, और फिर उसमें से जो भी ज्यादा तकलीफ वाले है उनको हाइपोक्सिया लेके आते थे, और इतने ज्यादा हाइपोक्सिया में बहुत मुश्किल होता था उनको बचा पाना। तो डेथ का एक बड़ा अहम कारण था मिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा था जो मिथ्स है उसके बारे में कोविड और फिलहाल चल रहे हैं, और तीसरा था कि नजरअंदाज करना ये लक्षणों पे और टेस्टिंग ना करना। तो उस इसमें इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा डेथ हुए। अभी भी गांव से जो लोग आ रहे हैं वो अभी भी इस आईसीयू में भी जो लोग आ रहे हैं वो कम से कम 5 से 10 दिन आजू बाजू कहीं घूमे हैं, घर पे ही उन्होंने इलाज करवाया कुछ झोला छाप डॉक्टर से, और फिर 6वें 7वें दिन और ज्यादा सीरियस होने से ही फिर उन्होंने हॉस्पिटल में अप्रोच किया है और आगे आए हैं। पर पिछले बार की तुलना में इस बार लॉकडाउन में इकोनॉमिक उतना लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था कहीं पे भी, उस वजह से इकोनॉमी चलती रही, काम चलते रहे, लेकिन फिर जहां जहाँ पे अचानक जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा प्रमाण में केसेस आने शुरू हुए, तो वहां पे फिर कुछ कुछ जिलों में डायरेक्ट कंटेनमेंट जोन बनाया गया, तो पूरा का पूरा जिला लॉकडाउन भी नहीं, कंटेनमेंट में था, जहाँ पे पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, डेयरी भी बंद रहेगी, सब्जियां मिली तो मिली, तो इस तरह से वहां पे था। लेकिन विशेषता छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में गाँव में इसका लॉकडाउन का अफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि गाँव में सरकार की योजनाओं में से खाना पहुंच रहा था जो गेहूं चावल है, और गांव का अपना एक सिस्टम है जिसमें वो साल भर का खाना अपने पास बचा लेते हैं, जैसे बारिश में काम हुआ तो साल भर का उनके पास खाना रहता है। तो इस तरह से भुखमरी वाली स्थिति गांव में नहीं थी, लेकिन शहरों में और अंडरप्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में खाना और राशन इसकी कमी बहुत थी। तो माइग्रेंट्स जब तक बाहर है तब तक उनको खाने की प्रॉब्लम थी, गांव में आने से उनको खाने की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि गांव में ऑलरेडी वो उनके घर पे साल भर का अनाज जो भी राशन है वो जमा था। तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन से हैं। और दूसरा है कि गांव के इसमें पिछले साल जो कोरोना का डर था वो इस साल बिल्कुल ही खत्म हो गया था, तो भले ही बार बार अपील की जा रही थी कि आपको मास्क पहनना है और लोगों को जुड़ना नहीं, मिलना नहीं, फिर भी हम जो फील्ड विजिट में देख रहे थे कि लोग तभी भी शादी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई मास्क नहीं पहना है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो इसका इससे बहुत ज्यादा फैला। और फिर बहुत लेट लॉकडाउन की घोषणाएं हुई, जो भी हुआ इनिशियली तो उसको कंटेन करने के लिए कोशिश की, लेकिन लोगों की मोबिलिटी उस शादी के सीजन में इतनी सारी थी, बहुत तेजी से गांव गांव में फैल गया। छत्तीसगढ़ में स्पेशली उस टाइम पे क्रिकेट के आयोजन हुए, एक महीना भर क्रिकेट का कोई रोड सेफ्टी सीरीज चला, जिसमें तेंदुलकर, लारा, ऐसे 6 टीम्स थी पूरे वर्ल्ड की जो पुराने प्लेयर रिटायर हो चुके, और उसमें डेली हर मैच में देखने के लिए 50,000 दर्शक रहते थे। तो ये सारा का सारा रायपुर में हुआ, तो इस वजह से भी बहुत लोगों को रायपुर में इतना जो आउटबर्स, इस बार छत्तीसगढ़ सेकंड नंबर पे था महाराष्ट्र के बाद, उसमें ये वर्ल्ड सीरीज और क्रिकेट जो फेमस चली गई मार्च के दौरान, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये भी एक हुआ कि क्यों इतना अचानक आउटबर्स्ट हुआ, जो पिछले साल छत्तीसगढ़ में नहीं था। छत्तीसगढ़ वाज वन ऑफ द स्टेट जो एकदम लेट में, जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में अगर अप्रैल में केसेस शुरू हुए तो छत्तीसगढ़ में जून जुलाई लग गया था जब केसेस आए एक्चुअली। इस बार ऐसा नहीं, इस बार बहुत तुरंत में आ गए थे। तो ये जो दूरदृष्टि का अभाव था कि किस चीजों को प्राधान्य दिया जाए, जैसे आईपीएल मैचेस भी शुरू थे अभी ये कोरोना के इतने बुरे दौर में भी, या उस टाइम पे प्रिकॉशंस नहीं लिए, जबकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी केसेस नागपुर में डेली 3,000 के आसपास केसेस चल रहे थे। तो उस वजह से भी एक लगता है कि हम सीख नहीं रहे हैं चीजों से, जो तत्परता है। और दूसरा है कि पिछले साल जो हमने अपॉर्चुनिटी खो दी अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की, वैसे ही रहे, 8 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला है, वही सेम सिचुएशन। तो ये शायद अगर इस बार भी हम उसका कुछ फायदा नहीं उठाएंगे तो हमारी हेल्थ सिस्टम अगले थर्ड वेव के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है, वैसी रहेगी, जो होगा वो फिर से राम भरोसे रहेगा। उसका रोकथाम का वही एक सिंपल सा चीज है, डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए। तो ये चीज अगर कहीं किसी भी तरह से मेंटेन हो जाती तो भले कितना भी इन्फेक्शियस क्यों ना हो वो फैलता नहीं इतना, क्योंकि जैसे आप कहेंगे कि डॉक्टर्स है और हेल्थ वर्कर्स है, तो ये तो पेशेंट देखते रहते हैं, फिर इन्हें क्यों नहीं हो रहा है वो, या वो फिर भी क्यों देख रहे हैं। तो उनको पता है कि उन्होंने प्रोटेक्शन सब पहना हुआ है या मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंसिंग, तो इसलिए वो अपना काम कर पाते हैं। पर पब्लिक अभी तक वो बात नहीं समझ पा रही है, या फिर राजकर्ता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तीन चीजें अगर हमारे प्रैक्टिस में, डेली प्रैक्टिस में आ जाए तो सिर्फ कोविड ही नहीं, अन्य कई बीमारियां हैं जो जिससे हम लोग छुटकारा पा लेंगे। तो ये एक चीज है, भले इन्फेक्शियस कितना भी चीज हो, जैसे इबोला है 60-70% है, 90% डेथ रेट है, या ये सारा है, ये इससे भी, इस पे भी हमने मात की है डिस्टेंसिंग से और हाइजीन से, पर कोविड अभी भी वो नहीं आ रहा है, क्योंकि जनसामान्य लोगों में अभी तक वो उतरा नहीं है कि इसको हम लोग, इससे बच सकते हैं, और इससे बचने के लिए ये दो तीन तरीके हैं जो बहुत ही आसान है, और इस चेन को तोड़ना है तो ये तीन तरीकों से बिल्कुल चेन टूट सकते हैं।
कोविड के आने से पहले आप के जैसे शहीद अस्पताल में किस तरह के केसेस ज्यादा आया करते थे? वहां पे पास की समस्या क्या थी प्री कोविड?
प्री कोविड तो फिर वहाँ पे मलेरिया, स्क्रब टाइफस काफी बढ़ रहा था,
अच्छा
जो बहुत ज्यादा कहीं और देखने को नहीं मिलता है, और वहाँ काफी ज्यादा बढ़ा था। फिर डिलीवरी जो शराब से ग्रसित लोग हैं उन लोगों में लीवर फेलियर और ये सब, या रोड एक्सीडेंट्स, यंग लोगों के रोड एक्सीडेंट्स, वो भी शराब और नशीली दवाइयों के इसमें, ये इनकी मात्रा काफी बड़ी थी और ये लोग फ्रिक्वेंटली आते थे। और फिर पैरालिसिस वाले लोग, अल्कोहल या तंबाकू खा के फिर बाद में कुछ हुआ है, स्ट्रोक, नेक बाइट, ये मतलब डेली रूटीन में जो भी ग्रामीण भाग में या शहरी भाग में जो भी पेशेंट आते थे उस वैसे ही थे, स्क्रब टाइफस ज्यादा था। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो छोटे से शहर में भी शराब और नशीली पदार्थ का जो उपलब्धता थी वो काफी ज्यादा थी, उस वजह से बूढ़े लोग और नौजवान लोग खासकर ये आते ही थे, स्पेशली कैजुअलिटी में, कि शराब पी के या नशीली चीजें लेके गाड़ी चला रहे, या पॉइजनिंग हो गई कोई नशीली चीजों से, तो ये प्रमाण बहुत बढ़ गया था जो चिंताजनक।
टीबी के केसेस, टीबी का आप क्या? लेकिन शायद
टीबी तो एंडेमिक ही है और वो आते ही रहता है, और वो शहीद अस्पताल में तो अलग अलग प्रकार के टीबी के मरीज आते थे, ब्रेन टीबी हो गया, स्पाइन टीबी हो गया, लंग टीबी है और स्किन टीबी, तो ऐसे वो तो हमेशा ही आते थे। और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होने की वजह से वो पकड़ा भी जल्दी जाता था, तो फिर उस वजह से काफी सारे केसेस ट्रीटमेंट पे भी शुरू हो जाते।
लेकिन डेथ मोर्टेलिटी का सबसे बड़ा कारण किसको मानेंगे आप प्री कोविड पीरियड में आपके इलाकों में?
प्री कोविड पीरियड में डेथ मोर्टेलिटी जो है वो एक है महत्व का कारण जो है वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन तो था, और दूसरा जो कारण था वो मलेरिया तो काफी कम हो गया अभी यहाँ पे, लेकिन डायबिटीज हाइपरटेंशन था, स्क्रब टाइफस से कुछ डेथ्स हुए थे, और तीसरा जो मैंने बताया कि अल्कोहल या ये टॉक्सिक सब्सटेंस के चक्कर में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे वो एक बड़ा कारण था डेथ का। तो और टीबी फिर उसके बाद है, टीबी में डेथ बहुत ही कम थे क्योंकि लोग आते थे और इलाज भी अभी उपलब्ध है, फ्री है, उस वजह से लोग इलाज लेते हैं। तो बहुत सीरियस होके आए और नहीं बच पाए ऐसे बहुत ही कम थे, मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था और बच भी जाते।
ये पिछले एक साल में जो लॉकडाउन के चलते और जो इकोनॉमी में गिरावट आई है, उससे पोषण पर क्या प्रभाव पड़ा है? लोगों के मतलब खाने की क्षमता घटी है कम होने से, तो कुपोषण के आप लोगों को कुछ अभी
हाँ, पोषण पे तो बहुत बहुत ज्यादा आया है उसका असर। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई है और अभी भी उनको डर रहता है कि किसी भी समय लॉकडाउन जाए तो पैसा बचाकर ही खर्च करते हैं। तो सब्जियां और ये, खैर गांव में तो सब्जियां लोगों के घरों में उग जाती है तो वो अवेलेबल भी रहती है, लेकिन जो लोग नहीं उगा पाते हैं ये, तो उनके खाने के इसमें बहुत सारे इसमें मेरे ख्याल से कमी आई है। सब्जियां, फल, ये सारी चीजें लेने में कमी आई है। तो न्यूट्रिशन जो बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्ग लोगों को मिलना चाहिए, वो उसमें क्वालिटी में काफी फर्क आया है और मेरे ख्याल से क्वांटिटी में भी फर्क आया है।
महिलाओं की समस्याओं को आप क्या कहेंगे? मतलब जैसे गर्भवती महिलाएं पहले साल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए चली जाती थी, लेकिन पिछले एक साल में शायद वो जाना मुश्किल हो, कोविड के डर से भी, लॉकडाउन से भी, तो उसका असर पड़ा है महिलाओं
बराबर बराबर।
मैटरनल मोर्टेलिटी पर, इन्फेंट मोर्टेलिटी पर?
मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं बता पाऊंगा मैं कि कितना असर पड़ा है, मतलब हम लोग का जो कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से मैं बोलूँ तो हमारे नॉर्मल डिलीवरीज कम हो गई थी क्योंकि फिर जो भी नॉर्मल हो सकती है वो लॉकडाउन की वजह से वो घर पे ही हो जाती थी। जो पिछले कुछ सालों में घर पे डिलीवरीज बंद हो गई थी वो घर पे होनी शुरू हो गई थी, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उन्हीं को रेफर किया जाता था। तो सीजरियन का नंबर बढ़ गया था जो दिखाते हैं मतलब हॉस्पिटल रजिस्टर में, वो भी इसलिए भी था कि बाकी भी सारे हॉस्पिटल भी बंद थे, तो सारे फिर पेशेंट कॉम्प्लिकेट होके या थोड़ा सीरियस होके यहाँ आएंगे तो लास्ट में सीजरियन ही करना पड़ता था। पर उस वजह से घर पे डिलीवरी होगी तो शायद बच्चे या माँ दोनों को खतरा हो सकता था, और हॉस्पिटल बंद होने की वजह से दूसरा लोग का पहुंचने का टाइम अस्पताल में लेट हो जाता था, तो जिस वजह से खतरा एक जान का हमेशा बना रहता था या बच्चे को खतरा रहता था। और इस बार कोविड में हमने देखा कि जिस महिला को गर्भवती है और डिलीवरी के लिए आई है और बाकी कोई भी छोटी सी भी कोमॉर्बिडिटी है तो, और उनको कोविड भी है, तो फिर जान का खतरा बना रहता था ज्यादा बाकी लोगों से, बाकी गर्भवती महिलाओं से ज्यादा। तो उसमें फिर कुछ कुछ मौतें देखी गई है कि कोविड है और फिर डिलीवरी है तो कॉम्प्लिकेटेड होगी तो बच्चे की मौत होगी या माँ की भी मौत होगी, तो ये निश्चित ही एक रिस्क फैक्टर जुड़ गया गर्भवती महिलाओं में, अगर कोविड है तो ज्यादा डर है मौत का। फिर नॉर्मल जो एएनसी सर्विसेज थी वो भी सफल हुई क्योंकि फिर पेशेंट जो चेक करने आते थे हर 2 महीने 1 महीने में तो उनके भी संख्या में गिरावट आई, और गांव में भी जो मितानिन आशा या एएनएम द्वारा चेकिंग होती थी, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स मिलती थी, तो वो भी शायद सिर्फ टैबलेट्स बांटी गई लेकिन फिर जो चेकिंग होती है एएनएम द्वारा ये वो गांव के लेवल पे भी नहीं हो पाई।
और अभी जो कोविड का सेकेंड वेव था, उसमें आपने कैसे संभाला? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वगैरह आपके यहाँ थी? और
हाँ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी
जी
बट उसके लिए फिर बहुत भागदौड़ करनी पड़ी क्योंकि वहां पे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर जो कुछ थे हमारे पास वो सेंट्रलाइज सप्लाई था, तो वो आसपास में कहीं नहीं मिलता था ऑक्सीजन, तो फिर कहीं और दूसरे बिलाई डिस्ट्रिक्ट से जाओ, डेली गाड़ी भेजो सिलेंडर भरवा के लाओ और फिर यहाँ ये रनिंग रखो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई, तो वो काफी दिक्कत हुई लेकिन फिर वो मैनेज हो गया उस समय में जब वो पीक दौर था उस समय मैनेज हो गया।
ये कोविड के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में आपको क्या लगता है? जैसे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल था, आईसीएमआर का था, उसमें कई ऐसी सारी दवाइयों का जिक्र था जो कंट्रोवर्शियल हैं वो, शुरुआती दौर से वो जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रमोट कर रहे थे, फिर बाद में रेमडेसिविर का भी जिक्र हुआ, आइवरमेक्टिन का हुआ। आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो जरूरत पड़ती है कोविड में, वो मेनली कौन से इंटरवेंशन और कौन से दवाइयों की पड़ती है?
हम लोग के यहाँ तो बालोद में उस समय जब सेप्रे में काम शुरू हुआ तो भले गाइडलाइन जो भी हो, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी थी वो स्टेरॉइड था, ऑक्सीजन था और एंटीकॉगुलेंट्स थे, पेरिनिक्स। तो उस समय ये तीनों चीजों से काफी सारे पेशेंट्स की जान बचा पाए, जो ना कॉस्टली थे, इजीली अवेलेबल थे और इसकी सच में जरूरत भी थी
जी।
और फिर रेमडेसिविर या बाकी सारी चीजें जो है वो तो अवेलेबल ही नहीं थी, बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल नहीं थी, तो बालोद में तो बिल्कुल ही मिल नहीं पाई। तो वो एक अच्छा हुआ कि हम लोग उसके पीछे ना पड़े या ना हमको कहीं से मिला वो, पर ये जो मेन स्टे था उस पे हम लोग काफी लोगों की जान बचा पाए, ऑक्सीजन, एंटीकोगुलेंट और स्टेरॉइड्स। और फिर बाद में तो जो अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग जुड़े थे, देखा दिल्ली, मुंबई, जहाँ बड़े बड़े शहर है, यहाँ हर जगह पे लोग डॉक्टर्स रेमडेसिविर या टोसिलिजुमाब या इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, लोगों को रिलेटिव्स को भेज रहे थे। रिलेटिव्स को बुरा लगता था, गिल्ट आती थी कि अरे हम लोग प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं इसलिए पेशेंट मर मर गया या खराब हो गया हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाद में तो ये सारा एविडेंस में आया कि वो सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस समय हम कितना भी समझाए लोगों को कि अरे इसकी जरूरत नहीं है, पर उनके प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर ने एक बार लिख दिया कि ये लेके आओ, तो उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। और इस गिल्ट में भी बहुत सारे लोग अभी भी होंगे कि अरे शायद मेरा पेशेंट बच जाता अगर मैं रेमडेसिविर लेके आता, लेकिन वो आज भी नहीं समझ पा रहा है कि नहीं वैसा कुछ नहीं होता, वो उतना शायद कारगर साबित नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है या फिर उसका इफेक्टिवनेस सच में उतना नहीं है। तो ये डॉक्टर फ्रेटर्निटी की तरफ से एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन चला गया लोगों में, जहाँ पे कि उनको मिराकल ड्रग्स करके उन्होंने पेश किया कि ये रहने से बच जाएगा, और वो अवेलेबल ही नहीं है तो पेशेंट बेचारे 100 रुपए या 1000 रुपए की दवाइयाँ 10,000, 20,000, 50,000 तक खरीद के लाते थे और फिर भी पेशेंट नहीं बचा पाते थे, या फिर जो खरीद नहीं पाए, जिनको कहीं से सोर्स नहीं मिला, उनकी जिंदगी भर का गिल्ट वो कैरी करेंगे कि हमारा पेशेंट बच सकता था अगर मैं दवाइयाँ कहीं से मिला देता, लेकिन वो नहीं ला पाए। शायद वो एविडेंस अभी कोई देखेगा भी नहीं, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी छोड़ के बहुत कम लोग इसको पोस्टमार्टम करेंगे कि सच में ये जरूरी था क्या, ये जरूरी नहीं था, इससे कितना फायदा होता है, बट बहुत सारे लोग ये गिल्ट कैरी करेंगे। तो जो गाइडलाइंस थी वो एविडेंस बेस्ड नहीं थी, और जो दवाइयाँ आई थी जैसे विटामिन सी या ये है और ये खैर तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है और इम्यूनिटी बढ़ाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो आइवरमेक्टिन लिखा गया, डॉक्सीसाइक्लिन लिखा गया, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लिखा गया, ये बहुत ही इरेशनल चीजें थी जो लिखी गई, और जिसकी वजह से लोगों को एक फॉल्स सेंस भी लगा कि ये कोरोना की दवाई है तो इससे बच जाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने खाई, कोई और बीमारी में शायद वो उनको फायदा हुआ होगा, जैसे स्क्रब टाइफस में डॉक्सीसाइक्लिन है तो जो एंडेमिक एरिया स्क्रब टाइफस का हुआ, स्क्रब टाइफस से उनको बचाव मिल गया, या आइवरमेक्टिन खाने से उनको कोई बाकी बीमारियां, स्ट्रॉन्ग लेट्स और ये सब है, वर्म्स से छुटकारा मिल गया, लेकिन ये कोविड के लिए तो नहीं था। तो जो एविडेंस जो भी गवर्नमेंट ने भी दिया, और ये तो बहुत ही एविडेंस लेस चीजें उन्होंने थोप दी लोगों पे, और बिकॉज ये गाइडलाइन आई और सबको फॉलो करना था तो हर कोई उसको फॉलो करने लगा था, क्योंकि नहीं करता तो लीगली उन पे एक्शन होता कि भाई गाइडलाइन में ये दिया क्यों नहीं है, पब्लिक भी गुस्सा करती, जो कि अच्छा है कि शहीद में जल्दी हम समझे कि ये चीजें उतना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी चीजें बहुत जरूरी है, और फिर एक्चुअली एविडेंस पे सोच के काम किया गया। जैसे प्लाज्मा थेरेपी हम लोग पहले से मना कर रहे थे सबको, हमारे दोस्त और रिलेटिव हर कोई प्लाज्मा के लिए हवा भाग रहे थे, हम सबको समझा रहे थे कि जरूरत नहीं है, फायदा नहीं होगा, बट फिर भी लोग मान ही नहीं रहे थे। बट फाइनली फिर जब WHO के इससे आया और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बोला कि नहीं जरूरी नहीं है ये सब, तब जाके है कि नहीं तो फिर CMC से लेके एम्स की सारे के गाइडलाइन में प्लाज्मा थेरेपी थी, रेमडेसिविर था, फ्लाविपिरावीर थी, टोसिलिजुमाब था, ये सारा कहीं ना कहीं था, पर उससे कितना फायदा हुआ लोगों को ये अभी पता नहीं, मतलब जब एविडेंस आएगा और कुछ डाटा आएगा तभी बोल पाएंगे। ये साल ये कोविड का पूरा वेव प्लाज्मा ढूंढने में लोगों ने लगा दिया, क्योंकि हर एक हॉस्पिटल उनको कह रहा था कि आप प्लाज्मा लेके आइए, और इतने लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है अपना कोविड होने के बाद, तो वो एविडेंस पे बेस्ड नहीं।
नहीं, इसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे डॉक्टर, जैसे एंटीबायोटिक्स का भी बहुत प्रिस्क्रिप्शन, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आम डॉक्टर जो हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े अस्पतालों में, ये इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं? उनको समझ में नहीं आता है क्या कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। मोटिव्स कमर्शियल एक तरफ हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा क्या फैक्टर है कि डॉक्टर
हेलो,
रैशनल प्रिस्क्रिप्शन कैसे कर सकते हैं?
सॉरी सॉरी, मैं लास्ट लास्ट लाइन मतलब मिस कर गया, मेरे को एक कॉल आ गया था।
मैं ये पूछ रहा था कि कमर्शियल कंसिडरेशंस होते हैं डॉक्टर्स के, वो तो हम जानते हैं, बड़े अस्पतालों में महंगी दवाई खरीदवाने का या महंगे डायग्नोस्टिक्स करने का, लेकिन उसके अलावा इनके ट्रेनिंग में कोई कमी है, इनके सोचने के क्षमता में कोई कमी है? क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंस से ही उनको समझ में आ जाएगा कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो ये इसके पीछे और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि इस तरह के?
साइंटिफिक एविडेंस को एक स्टार्टिंग से हमको हायरार्की बहुत सिखाई जाती है। मेरा सीनियर या मैंने जिनको देखा है जो दवाई दे रहा है, मैं वही दूंगा, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, और वो बहुत बार एविडेंस बेस्ड नहीं रहता। हाँ, मतलब जहाँ पे आपको आपका बैकिंग कहता है और आपका आपके खुद के एविडेंस डाटा कहते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिर उसको क्वेश्चन किया जाता। और शहरों में और ये एंटीबायोटिक बहुत पहले से ही जैसे चाहे वैसे मनमाने तरीके से यूज होती है, तो कोविड में भी उसको उसी तरह से यूज किया गया। तो ये एक है, बस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने इसको कोविड को एक जरिया समझा, क्योंकि सारे चीजें बंद थी, हॉस्पिटलाइजेशन बंद है, लोग आ नहीं रहे, सब है, तो उनके पास एक ही जरिया है वो हॉस्पिटल रन करने का, इस कन्वर्टेड इनटू कोविड हॉस्पिटल्स, और उसको चलाते रहो, और फिर वो गवर्नमेंट आपको पैसा देगा, या फिर पीपल आर ऑल्सो विलिंग टू पे मोर अमाउंट कि कोविड पेशेंट है और उसको ट्रीट करना है और आप ठीक कर रहे हैं। तो ये एक था, बट अगेन किसी के पास कोई उपाय नहीं है, तो फिर जो भी छोटा मोटा एविडेंस है उस एविडेंस को आगे रख के वो दवाइयाँ प्रोक्योर करने के लिए कोशिश करो। बट फिर उसमें अगर आपका सारा एटीट्यूड या बचपन या ग्रोइंग फेज ही हायरार्की में गया है कि कहाँ सुना है, किसी को लग रहा है, और एविडेंस आप कभी क्रॉस चेक नहीं करते हो, तो ये बहुत मुश्किल है कि ऐसे संकट की घड़ी में आप एविडेंस बेस्ड कुछ करोगे। तो वो एक काफी बड़ी चीज है जो यहाँ के एकेडमिक्स में लैक है, कि हम एविडेंस बेस्ड नहीं सोचते, हम प्रोटोकॉल बेस्ड नहीं सोचते। हम लोग, हर किसी हॉस्पिटल का अपना प्रोटोकॉल रहता है, हर कोई अपने हिसाब से एंटीबायोटिक देता है, हर कोई अपने हिसाब से पेशेंट्स को आगे बढ़ता है, जो भी फ्लो चार्ट है उस हिसाब से। बट फिर स्टैंडर्डाइज एविडेंस जो है या स्टैंडर्डाइज केयर है वो भारत में नहीं मिलती। आप इवन दो हॉस्पिटल के बीच में जो बाजू बाजू में हो, वहां पे आपको एक फर्क दिख जाएगा, मेडिकल कॉलेजेस में दिख जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट्स में दिख जाएगा फर्क। तो ये तो कोविड है, तो इतना इमरजेंसी सिचुएशन था, तो लोगों ने, मुझे नहीं लगता कितनी स्टडी की, लेकिन जो सुना जो देखा, किसी ने, एक ने प्रपोज किया तो दूसरे ने करके देखा, तो उसी इसमें ये हुआ। लेकिन बाद में सबसे बड़ी गलती हुई कि एविडेंस आने के बावजूद भी उन्होंने वो चीज प्रैक्टिस बंद नहीं की।
कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जैसे छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा स्टेट सपोर्ट था गवर्नमेंट की तरफ से कोविड पेशेंट्स को, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो बहुत महंगा रहा होगा सबके लिए।
हाँ, छत्तीसगढ़ में कोविड पेशेंट को, हाँ, तो इनिशियल दौर में तो सारे सरकारी अस्पताल ही कोविड केयर दे रहे थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेट वालों को भी अलाउ किया, लेकिन उन्होंने कैपिंग भी रखा। और दूसरा, वो जो जो यहाँ का इंश्योरेंस स्कीम है, आयुष्मान भारत या खूबचंद बघेल वाला, उसमें उन्होंने कोविड को ले लिया। उस वजह से जो जो इम्पैनल हॉस्पिटल थे जहाँ पे वो इंश्योरेंस मिलता है, तो लोगों का सारा ट्रीटमेंट फिर वो फ्री हुआ, एटलीस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जहाँ इम्पैनल हॉस्पिटल है जो। पर प्राइवेट में फिर ये वो कॉस्ट तो था ही, और फिर वो लोगों का अपना चॉइस था कि वो प्राइवेट जाना चाहते हैं या ये, तो प्राइवेट में तो फिर कॉस्ट काफी बड़ा था। मतलब लोग गए प्राइवेट में, हमारे हॉस्पिटल से 50,000 1 लाख रुपया खर्चा करके दूसरे दिन 2 दिन बाद फिर से वापस आ गए कि पैसा ही नहीं बचा, इवन खाने के लिए पैसा नहीं देता, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि भाई 1 लाख रुपया 2 दिन में खत्म हो जाएगा।
इस पेंडेमिक के बाद जो अनुभव है उसमें फ्री हेल्थ केयर फॉर ऑल इस तरह की एक बात हम आगे रखें तो उसका कुछ पब्लिक में गवर्नमेंट में कुछ असर पड़ेगा, डिमांड इस तरह रख सकते हैं।
हाँ, मुझे लगता है अगर सिविल सोसाइटी और जो भी एक्टिविस्ट लोग हैं अगर इसको क्लियरली एक मेन एजेंडा रख के आगे सबके सामने रखने के लिए कोशिश करें सब मिलके, सिंगल सिंगल आइलैंड्स में करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों तक वो पहुंचना या इवन एक्नॉलेज करना ऐसा कुछ सोच रहे करके, तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है फिलहाल में कि जहाँ पे सारी दुनिया या पूरा देश इस स्थिति को देख चुका है कि क्या क्या दिक्कतें आई थी, ये भी देख चुका है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वोलेटाइल है और फिर बिगड़ भी सकता है और स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, तो अगर अभी स्ट्रेंथनिंग की बात नहीं करेंगे, अभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो शायद बाद में फिर से कोई बड़ा पैंडेमिक लगेगा जब सारे लोग फिर से जाग जाए और देखे और बोले कि नहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब तक हेल्थ प्रायोरिटी नहीं थी लेकिन अभी हेल्थ प्रायोरिटी फिलहाल है, तो इस स्टेज में अगर हम बात करते हैं तो लोगों तक ज्यादा पहुंचेगी और लोग जब डिमांड करना शुरू करेंगे तब फिर इसको प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को लेना ही पड़ेगा।
जो आंकड़े हैं मौतों की या केसेस की, आपके नजर में क्या लगता है कि कितने एक्यूरेट हैं या फर्क है तो कितना फर्क है ऑफिशियल और अनऑफिशियल इसमें, एक अंदाजन कितना फर्क?
मेरे ख्याल से उसको जो भी है 4 times तो कम से कम मल्टीप्लाई कर दीजिए।
4 times? अच्छा,
हाँ, मतलब जो भी डेथ के आंकड़े उसको 4 गुना तो मल्टीप्लाई कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसका मेन कारण है कि सस्पेक्टेड लोग भी बहुत थे, ये वायरस थोड़ा अलग था तो इस वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी है टेस्टिंग की वो कम थी, जैसे एंटीजन में 50-60% लोग ही पॉजिटिव आ रहे थे जबकि मान लो 100 लोगों को कोरोना है तो इसका 60% ही पॉजिटिव आएगा, 40 को फॉल्स निगेटिव आएगा। साथ ही RT-PCR भी इस बार बहुत ज्यादा फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा था, तो मतलब उनका ही टेस्ट 5 दिन बाद फिर से करा तो शायद पॉजिटिव आ जाएंगे। पर फिर इन लोगों में मौतें भी हुई है, ये जो सस्पेक्टेड हम कह रहे हैं ना कोविड सस्पेक्टेड, तो जैसे हमारे अस्पताल में ही अगर मान लो 1 महीने में 80 डेथ्स हुई है तो उसमें से खाली 20 से 25 डेथ्स जो है वो कोविड पॉजिटिव में हुई और बाकी जो भी जितने हैं 50 से 55 डेथ जो हुई है वो सस्पेक्टेड में हुई है जिनको कोविड के सारे लक्षण है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया है, तो इसको हमने कहीं गिना ही नहीं है। गांव में जो मौतें हुई है सडन हार्ट अटैक से और इससे जो कोविड रिलेटेड कोएगुलेशन है या जो ट्रांसपोर्ट के दौरान हुई है उनको हमने कहीं गिना ही नहीं है, वो कहीं पता ही नहीं है। तो कोविड जब तक आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो उस डेथ को हम लोग कोविड डेथ में नहीं गिनते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिपोर्ट नेगेटिव है या जिन्होंने टेस्टिंग ही नहीं कराया क्योंकि वहाँ पे वो सुविधा ही नहीं थी, तो ऐसे बहुत सारे डेथ मिस हो गए, तो इसलिए हम लोग पक्का ही बोल सकते हैं कि 4 गुना तो पक्का ही है, उससे आगे कितना ये पता नहीं लेकिन 3-4 गुना तो पक्का ही है उससे ज्यादा।
अभी वैक्सीनेशन का क्या हाल है छत्तीसगढ़ में, कहाँ तक पहुंचा है लोगों तक?
वैक्सीनेशन में शुरुआत के दौर में लोग वैक्सीन लेने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि पहले डोज में काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी और उतना अच्छा नहीं था और लोग डर रहे थे कि कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो मिथ बहुत थे। अब डेथ शुरू हो गया और फिर से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को बोला जा रहा है तो वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन का काफी मिसमैनेजमेंट हो गया।
तो आपका क्या अनुमान है अभी आने वाले दिनों में कैसे ये हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोविड का, जहां तक सवाल है?
बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, मतलब बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना क्योंकि कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 3rd वेव आएगी और ये, लेकिन कितना सीवियर रहेगी, कौन सा एज ग्रुप अफेक्ट होगा, वैक्सीन की एफिकेसी कितने दिन चलेगी, सच में ये मतलब ये सारे अनसर्टिनिटी वाले चीजें हैं, तो लगता है कि मतलब अभी इस वक्त बताना बहुत ही मुश्किल है। 3rd वेव आएगी शायद तो फिर उस वक्त उतना सीवियर नहीं रहेगी जितनी 2nd वेव थी ऐसा लगता है, और तब तक अगर वैक्सीनेशन सच में अच्छे से हो तो शायद सिवियरिटी जो है डिसीज की या डेथ की ये आंकड़ा भी कम रहेगा, पर अगर वैसा नहीं हुआ और बहुत सारे लोग नॉन वैक्सीनेटेड रह गए और शायद उनको कोविड भी नहीं हुआ एक भी बार, तो फिर से फिर नेक्स्ट वेव में उन सारे लोगों को फिर से हो सकता है, और फिर से जब जो अभी हुआ है वो सारा चीज फिर से रिपीट हो सकता है।
रिपीट होगा,
ऑल डिपेंड्स ऑन की सरकार कितना संवेदनशील है और उसको कितने अच्छे से उसको इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है।
और नॉन कोविड केसेस पे कितना ध्यान देना चाहिए उसके बारे में क्या आपका राय है? जो
नॉन कोविड तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स है, हार्ट डिजीज के है, ये लोग तो करीबन भुला ही दिए गए हैं। तो अभी क्योंकि अभी इंडिया में बर्डन भी बढ़ रहा है एनसीडी का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, पर फिर अभी उस पर उतना ध्यान नहीं है, या फिर लोग भी परहेज कर रहे हैं हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ लेने के लिए। तो ये सब अभी रिफ्लेक्ट होगा ज्यादा मौतों में, जैसे पैरालिसिस या हार्ट अटैक है, ये सब की नंबर बढ़ सकता है।